ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दिकृतेन्दिवरम् जड्डञ्जागरोति संविदतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्जलभुजं ध्यायेम् दाम तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं कृते
शिष्य गुरु गौरांग और गिरिराज गोवर्धन की कृपा से आज करीब कतो दिन एक मास से 28 दिन 28 दिन हम लोगों का व्यतीत हो चुका है। पास्ट 28 डेज नाउ 4 डेज 2 डेज अप टू पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद में 2 दिन और। भगवान की कृपा से कोई विघ्न नहीं हुआ और अच्छी तरह से सभी कुछ चल रहा है। हम लोग पंचम याम साधन भक्त विनोद ठाकुर के भजन रहस्य से समाप्त किया। षष्ठ याम साधन साधन की दृष्टि से है भाव। कौन कौन है? पहला साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति अर्थभाव। और नित्य लीला की दृष्टि से संध्या के पश्चात 6 दंड सांध्य लीला, गोचारण के बाद में कृष्ण घर में आए हैं, स्नान इत्यादि कर लिए हैं और गोदोहन के लिए जाएंगे। इस तरह से ये अष्टयाम की वो लीला है कृष्ण की। यद्यपि हम लोग भजन करते करते अभी भावावस्था में नहीं आए हैं, डोंट थिंक दैट वी आर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग भाव, सो ऑल आर इन दिस मूड, वेस्ट ऑर्डिनरी थिंग, वी आर नॉट इन भाव। हम लोग भावावस्था में नहीं है। हाँ, कहा जा सकता है श्रद्धा है, कुछ निष्ठा भी आ गई है, किसी किसी में कुछ रुचि भी हो गई हो। इसके बाद में बहुत ही कम लोगों का प्रवेश। यदि रुचि भी आ गई है तो समझो जो हमारा परम सौभाग्य है। तब एक बात जरूर हुआ है भजन रहस्य इत्यादि के सुनने से, ये हमारे इष्ट देव कृष्ण नहीं है, हमारी इष्ट देवी राधिका है और उन्हीं के चरणों में दास दासी बनना ही हमारे समस्त शास्त्रों का साथ। इतना तो एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ एंड भजन वी हैव फिक्स्ड, वेदर वी आर फुल ऑफ अनर्थ लस्ट एंड एनीथिंग, बट इफ यू वांट ओनली दिस वी वांट राधा जी का दास, कितना भी जैसा भी कोई हो। तो जिसको भावावस्था उपस्थित हुई है, जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो गई है, उसके कुछ लक्षण बाह्य लक्षण बतला रहे हैं। ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुरजांशु साम्य भाग रुचि चित्तम आशिण्य कृद स्वभाव उच्यते। क्या तात्पर्य? शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व क्या चीज है? शुद्ध सत्व राधा जी का भाव है, कृष्ण की सेवा करने की परिपाटी जो राधा जी में है, वही साधकों के हृदय में संचरित होती है, तब समझो जे ये भाव रहती है। उस समय प्रेम के जितने आभास हैं वो सब हृदय में संचरित होने लगते हैं, प्रेम का आभास जो उसके लक्षण हैं। और इस समय में जिसका जैसा साधन होगा ऐसे ही उनकी सिद्धि होगी, वस्तु सिद्धि होगी। एक तरह से ये रति या शुद्ध सत्व अथवा भाव ये उसका प्रेम का आभास, इसलिए शुद्ध सत्वम शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। क्या लादिनी संधनी के ऊपर लादिनी और संबित का भाव, संबित का भाव यहां तत्वज्ञान से नहीं, राधा जी के कृष्ण के प्रति सेवा की भावना वो यहां है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। जब लादिनी और संबित का सा, इसी को भक्ति कहते हैं, और यही राधा जी का मूल स्वरूप है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुरजांशु साम्य भाव। यदि प्रेम को सूर्य माना जाए तो रति को या भाव को क्या माना जाएगा? भाव, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुरजांशु किरण साम्य भाव को उसके समान। इसलिए सहज नहीं है जिसको ये उत्पन्न हो गया और बहुत निकट में पहुंच गया। इसलिए हम लोगों को साधन करना चाहिए तो उस सिद्धि के, यदि भाव उत्पन्न हो गया है तो वो व्यक्ति चंचल हो जाएगा, स्थिर नहीं रह सकता, असत्विक भाव आएंगे उसका, प्रेम की हिलावरें आने लग जाएंगी। नैनम गलद अश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निचितं वपुः कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु जी स्वयं साधक भाव से यहाँ पर कह रहे हैं, स्वयं ब्रजंद नंदन अखिल रसामृत सिंधु, किंतु हम लोगों के लिए वो कहते हैं कि आह मुझको तो प्रेम हुआ नहीं, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, कब ऐसी दशा मेरी उपस्थित होगी? नैनम गलत अश्रुधारे, निरंतर अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लग जाएगी प्रेम से, बदन गला रुद्ध हो जाएगा गदगद, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ नहीं बोल करके ज ज ग ग करते थे, वो अर्थ था हो जाएगा। कुलकर निचितम रोमांच हो जाएगा, जब भी मैं नाम लूं मेरी ये दशा हो। ये भी क्या है, बाह्य लक्षण है, अंतर लक्षण तो वर्णन करना बड़ा मुश्किल, ये बाह्य लक्षण है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन, चैतन्य चैतामृत में इसका अनुवाद किया है। प्रेम धन यदि नहीं है कृष्ण के प्रति, प्रेम नहीं होने से भी भाव नहीं है, प्रेम तो बहुत ऊंचा, रति नहीं हुई उसके बिना दरिद्र जीवन है, यह जीवन दरिद्र है। हे प्रभो आप मुझे दास बना लीजिए और वेतन के रूप में मुझे प्रेम धन को प्रदान कीजिए, यह प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु जी करते हैं। हाँ यह शुड एक्सप्लेन कैन यू यो
explanation of the three Yama Bhata Kansya is complete. And she is beginning the sixth Yama, Shasti Yama. From the point of view of Sadhana, then this Yama, this chapter corresponds to the stage of Bhava. Sado Sadhana, Sado Sadhana, Bhajana Priya Aradhana Ki Nisha Ruchi Asapti, and now the state of Bhava. And from the point of view of the Nitya Lila, the eternal pastimes of Radha and Krishna join one in eight portions of the day. Then this Shastri Kali Bhajan refers to Shayam Lila. Shayam Lila. It is from 6 o'clock to 8:24. So, Srila Gurudev explained that even though he's describing the method of bhajan for a sadhana in the state of bhava, it does not mean that the entire audience has reached the stage of bhava. But rather, this stage is extremely rare. What to speak of attaining this stage, if someone simply attained ruchi, some taste for this, then they are very fortunate. So, Srila Gurudev is explaining these things. Why? In order to, so that all the devotees, whether they are covered with anatta or free from anatta, whatever their condition, all should fix the goal of their life. That is that Krishna is not like Ishtadev. Radhika is not Ishtadev. And I aspire to become her dasi, her maid servant. This is the goal of life. So this sixth stage corresponds to the stage of heart. Bhava Vasta has been defined by Siddhu Goswami Pari, Dr. Sankara Sindhu. Shuddha Satta Visheshatma, Prema Suryam Susangeva, Ruchi Vichita Nasrinya, Krita Aso, Bhava Ruchite. What is Shuddha Satta? Pure existence. That is Radhika's mood. And when Radhika's mood is infused in the heart of the sadhak, this stage is called bhava. is the state of bhava is prema bhas. Not praying, but the state just prior to praying, wherein a semblance of the symptoms of praying are experienced by the sadhana. So Rupa Goswami explained Shuddha Sattva. This mood of Radhika is Visheshatma. Visheshatma means it is the samvriti or the essence of the function of samvrit shakti and samvriti shakti. So here samvrit, generic samvrit refers to the knowledge potency. But in this context, the action of samvrit shakti is not tattva jnana, but rather it is sarvabhavana, the feelings which is power to render varieties of service. So here, prema suryamsu samyava. If praying is considered to be the sun, in this analogy, if praying is the sun, then bhav is a kiran or a ray emanating from that sun. Therefore this bhav is not an ordinary thing. It's difficult to attain. One will have to practice very carefully under guidance, sadhana bhakti. And if one ray of this praying will come to God in the form of bhava, then the devotee remains always in a state of agitation and restlessness, and such bhavas will manifest upon the body of that devotee. At that time, he can pray, as Sri Chaitanya Mahaprabhu prayed, Nayanam Garadashu Daraya.
One thing more. One thing, Ruchibhi Chittam Ashina, I have not explained.
Yes. You want to, I should explain?
Yes. Ruchibhi Chittam Ashina. What is Ruchi and what is Mashri?
This stage is called bhava, when the heart of the chitta of the sadhak becomes tadatmi with the vritti of samvita dharini shakti. But practically speaking, what does that mean? What is that experience, practically speaking? So, Sri Rupa Goswami describes ruchi this chitta vasrenya. Dura vasrenya means molten. The chitta, the heart of the sadhak, begins to melt. But what is that melting? That melting is caused by ruchi, taste. So here ruchi is the tamasanya. Here, the word ruchi is bhavavasana in the plural. Why? Because this ruchi is not one kind of ruchi, but three kinds of ruchi. First kind, bhavaprat avilas. The melting of the heart is comprised of a very intense disposition of continuous hankering for what? To obtain one's ishtadeva. This is the first type of ruchi. Second type of ruchi, anukul avilas. The heart is always in a constant disposition of hankering to render some seva, which is anukul, which is particularly favorable for the happiness of one's ishtadev, such as all the services rendered by Sri Rupa Mandira, such as offering tampo, massaging Arika's lotus feet, bringing fresh cool water, taking over Abhisa. These are all very favorable, very satisfying for Sri Rupa Mandira. So the desire to render those services which are particularly favorable is called anukul. It is the second type of ruchi. Then, third type of ruchi, surit avilas, sovar avilas. Sovar, the word sovar comes from surit, surit avilas. Means friendship, intimacy. The desire not only to attain one's ishtadev, not only to render a favorable service, But to have very deep intimacy or oneness of heart with one's experience. So when the heart becomes always restless, being agitated by these three types of desire, this is called the melting of the heart, and that state is called heart melting. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he's speaking to Sri Chaitanya, he's playing the role of a sadhak and speaking the verses according to the stage. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu is playing the role of a sadhak in the stage of love, then he uttered this sixth verse of Sri Chaitanya, Nayam Garda Shivaya Varnam Garda Rudayanta. So here, saying, Nayam Garda Shivaya, when will tears come up from my eyes? When? Not only once or twice, but appearance or disappearance day. When? Nayam Garda Shivaya, flowing, unbroken, in an unbroken stream, continuing tears coming, without any break. When will that stage come? Vadanas Garka, when will my throat become choked with emotion and I'll be unable to speak? Should I give an example? At the time of Radhanatha Mahotsa, Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing before Sri Jagannath Dev. But he could not utter the name of Jagannath Dev. Only the sound was coming from his mouth, Ajajagaga, Ajajagaga. So this is an example. Vadana Gagga Mutayagya. Pulakarnis Chambhu Kada. When, at the time when I take the name of Krishna, will my whole body become thrilled with percolation? So, all of these symptoms, they're Bhagavata, external symptoms of Bhagavata. The actual internal experience of it is indescribable. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was absorbing this mood, he said, after the fire, Prema Dana Bhima Vyata Tareta Jivan Dasa Kari Dasa Kari Dasa Kari Dasa Kari. In the stage of bhav, the devotee thinks, where is praying? I don't have praying, but praying is the only thing which has value. So being bereft of the treasure of praying, Daritra Divan, my life is useless. Daritra, I am completely destitute. I am poverty stricken. So, Dasa Kori Vetan Mori, then I'll pray that. Oh, Prasad, please make me your servant. So, servant should have a salary. So, make me your servant and pay me the salary of praying, transcendental love. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, to epitomize the mood of the sadhak in the state of love, he has spoken these verses.
संक्षेप में भाव की तो व्याख्या की गई, और भी भक्ति रसामृत सिंधु में भाव की व्याख्या दी गई है। भाव क्या है? प्रेमस्तु प्रथम अवस्था भाव इत्यभिधीयते सात्विकार स्वल्प मात्रा शिव उत्तापा पुलकादय प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम भाव है। प्रेम की हमने पहले आभास बतलाया था, उसमें यही तात्पर्य। प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम भाव है। भावावस्था में पुलक, अश्रु, कंप आदि अष्ट सात्विक भाव थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्थात धुमायित रूप में रहते हैं। प्रेमेर प्रथम अवस्था भावतार नाम पुलक अश्रु स्वल्प है सात्विक विकास। भाव का दूसरा नाम रति है, भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं। यही भाव रति पूर्ण विकसित होने पर भक्ति रूप प्रेम का अंकुर माना गया। पूर्ण रूप से यदि भक्ति विकसित है तो उसका अंकुर समझो भाव को, भाव अंकुर और उसे प्रेम भक्ति विकसित रूप में है। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप प्रेम सूर्य की किरण सदृश एवं रुचि के द्वारा चित्त को आर्द्र करने वाली कृष्ण अनुशीलन को भाव कहते हैं। शुद्ध सत्व बतलाए हमने, राधिका जी का विशेष भाव शुद्ध सत्व, उसको लिए हमने बतलाया लादनी और संबित का सार संधनी के ऊपर। संधनी हम लोगों का हृदय है, जीव का भाव, और उसके ऊपर में संधनी और संबित दोनों के भाव मिलित रूप में जब प्रकाशित होते हैं तो वो प्रेम रूपी सूर्य और उसकी किरण सदृश अल्प अल्प मात्रा में जब प्रकाशित होता है तो ऐसे अनुशीलन को, ऐसे साधन को भाव कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस इस श्लोक की टीका में लिखा है, पूर्वोक्त साधन भक्ति जब भाव के को उद्देश्य को भाव की प्राप्ति के लिए जब साधन किए जाते हैं उस समय रुचि भगवत प्राप्ति की अनुकूल अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा होती है और सौहार्द अभिलाषा के द्वारा चित्र की आर्द्रता संपादन करने पर उसे भाव भक्ति कहते हैं। क्या तात्पर्य? पूर्वोक्त साधन भक्ति जब भाव के लिए कृति श्रद्ध भवेत श्रद्ध भावा ससाधन अभिदा नित्य सिद्धस्य प्रापट्टंग रिधि साध्यता। तो पूर्वोक्त साधन जो भक्ति है हम लोग कर रहे हैं, भाव को लक्ष्य करके, भाव भक्ति को लक्ष्य करके जब करते हैं उस समय रुचि के द्वारा, रुचि माने भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, अनुकूल जो भक्तों में रागात्मक भक्ति में होती है और सौहार्द ममता, ममता पूर्ण रूप में होगी तो उस समय सौहार्द ऐसे होने की इच्छा, ममता करने की इच्छा रहेगी, उसके द्वारा चित्त आर्द्र होने पर उसको भाव भक्ति कहते हैं। उसका स्वरूप है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व कहने से भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संबित वृत्ति, शुद्ध सत्व विशेष पद से स्वरूप शक्ति की राधिका की दूसरी लादिनी नामक महाशक्ति का बोध होता है। तो ये संबित और लादिनी दोनों का सार ये है प्रेम। इसे शुद्ध सत्व विशेष में उक्त लादिनी की सर्वोच्च अवस्था महाभाव भी अंतर्भुक्त है ऐसा समझ लेना होगा। महाभाव तक तो अतएव संबित और लादिनी दोनों शक्तियों के सम्मिलित सार स्वरूप भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में तदात्म भाव से अवस्थित अनुकूल इच्छामय परम प्रवृत्ति को ही शुद्ध सत्व विशेष आत्मा समझनी चाहिए। संधिनी के ऊपर, जीव के स्वरूप के ऊपर संबित और लादिनी दोनों शक्तियों के साथ मिलित जो कि भगवत परिकरों में होता है, शक्करस में शक्त भाव श्रीदाम इत्यादि, वात्सल्य भाव नंद बाबा जसोदा इत्यादि के हृदय में जो भाव, और गोपियों में कामात्मिका गोपियां और तद्दत इच्छा भावात्मिका, इन गोपियों के हृदय में जो भाव रहता है तदात्म भाव से, उसको समझना चाहिए, उनके हृदय में यह रहती। उनसे यदि कृपा करके यदि हृदय में संचरित हो तब तो वो भाव हुआ। उस समय में उनकी अनुकूल इच्छामयी परम प्रवृत्ति ही शुद्ध सप्त विशेष आत्मा समझनी चाहिए। दूसरे सरल शब्दों में कृष्ण के नित्य परिकरों में, प्रियजनों में के आधार में स्थित नित्य सिद्ध भाव ही शुद्ध सत्व विशेष। क्या नंद बाबा जसोदा मैया में, श्रीदाम सुबल इत्यादि के हृदय में, गोपियों के हृदय में, मंजरियों के हृदय में जो कृष्ण सेवा की, राधा जी की सेवना की शुद्ध वासना है, उन सिद्ध भावों साधकों, उन शुद्ध सिद्ध महात्माओं में, परिकरों में वही शुद्ध सत्व, उनके अनुगत्य में भजन करने पर, उनके हृदय से कृपा करके वो जीवों के हृदय में संचरित कर। कैसे करते हैं इसका आगे बतला रहे हैं। वही भाव भक्ति जो संचरित करते हैं, प्रेम भक्ति रूपी सूर्य की प्रथम किरणों के समान है, इसलिए इसे प्रेमांकुर भी कहा जाता है। अब वो कैसे संचरित होगा शुद्ध भक्तों से, परिकर के जो भक्त हैं उनका अनुगमन करने से। भाव का स्वाभाविक कार्य कृष्ण स्वरूप और कृष्ण लीला के स्वरूप को प्रकाश करना है। भाव का स्वरूप स्वाभाविक कार्य क्या है, कृष्ण स्वरूप। इसे कृष्ण और कृष्ण के परिकर सबको समझो, गोपियों को भी समझ लो, तथा कृष्ण लीला के स्वरूप को प्रकाश कर। यह दो प्रकार से होता है, साधना अभिनिवेशक और कृष्ण और कृष्ण भक्त प्रसाद। साधन अभिनिवेश किसको कहते हैं, महत्संग से रसिक तत्वज्ञ ऐसा कोई भक्त हो, महत्संग इनको कहते हैं। इनके संग से जीव भक्ति के, शुद्ध भक्ति के साधन में प्रवृत्त होता है। बिना उनके संग के, बिना उनके उपदेशों के कोई भी महत व्यक्ति साधु भगवत भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो सकता। यदि होता भी दिखता है तो वो व्यभिचार होता है। इसी का यदि साधु संघ के बिना भी देखा जाए और यहां तक उनमें रोमांच भी देखा जाए, अश्रुपात भी देखा जाए, तो वो नकली होता है। कुछ क्षण के लिए वो भक्ति का विरोधी है। साधुओं के संग में ही ऐसी स्वाभाविक रीति से, उनकी कृपा से वो शक्ति इधर हृदय में संचरित हो सकती। तो महत्संग से जीव भगवत भक्ति के साधन में प्रवृत्त होता है और उसमें रुचि भी उत्पन्न होती है कृष्ण सेवा की वासना। रुचि सभी कामों में, हरि कथा में, सेवा में, गुरु सेवा में, वैष्णव सेवा में, सभी में। और पश्चात भगवान के प्रति आसक्ति और अंत में भाव की प्राप्ति होती है। यह साधन अभिनिवेशक, यह साधन के माध्यम से भगवान के तरफ में चला। और बिना किसी साधन के अकस्मात किसी में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाए तो उसे श्री कृष्ण का प्रसादक या कृष्ण भक्त प्रसादक भाव, बिल्व मंगल, मां वेश्याशक्त। और उसको जो अश्रुपात इत्यादि, अष्ट सात्विक भाव इत्यादि जो होने लगे, वो क्या चीज है, कृष्ण की कृपा है, प्रसादज्ञ, या कृष्ण भक्त प्रसादज्ञ। बिना भगवान और कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के ऐसी रति उत्पन्न नहीं हो सकती। साधारण रूप से साधन अभिनिवेशक भाव ही पैदा होता है। साधन करते 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 कृष्ण की कृपा या वैष्णव की कृपा हो जाती है और वैसा प्रेम बहुत रेयर है, बहुत कम है। प्रसादक भाव उनकी कृपा से बिना साधन भजन किए हुए ही हो गया। इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। जमलार्जुन क्या दोनों भाई थे ना, नल कर्म क्या साधन भजन किया और कृष्ण ने उसे स्पर्श कर दिया और कहते हैं कि उसमें भाव उत्पन्न हो गया। केवल भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, पीछे देखते हैं कि प्रेम भक्ति लाभ कर और
ब्रज में जाकर परिकर बन गया।
परगण ये कैसे हुआ, क्या साधन किया? साधन तो कुछ देखा जा नहीं रहा, तो ये किसकी कृपा है? यही अहेतु की कृपा है, यही भक्त। कौन भक्त? नारद जी जैसे भक्त हो या उनके अनुगत्य में चलने वाले रूप सनातन इत्यादि भी हो, उनके परिकर भक्त विनोद ठाकुर इत्यादि हैं प्रभुपाद, ऐसे लोगों की कृपा हो हाँ उनके ऊपर माथुर ब्राह्मणी वो तो ऐसे ही कुछ देखे जा सकते हैं इधर उधर शास्त्र। किंतु महतों की कृपा पर या भगवान की कृपा पर या भक्तों की कृपा पर निर्भर मत करो अधिक। ये कब कृपा करेंगे? साधन करते चलो और हृदय से साधन करो और ये सब साधन करते 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 बीच में किसी के हृदय में कामना हो, संसारिक भोग वासना हो, बड़ी भारी गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए। साधन भजन करने से हृदय में काम की वासना हृदयोग नहीं रह सकता, असंभव है। मैं तो कहता हूं जैसे वही निष्ठा आने पर भी तो ये सब दूर हो जाते हैं, इसलिए खूब सावधान रूप में रहकर साधन भजन करो और उसमें भगवान कृपा की प्रार्थना करो। जैसे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने प्रार्थना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रार्थना की। श्री कृष्ण प्रसाद उद्भाव कैसे होगा? कृष्ण ने वरदान दे दिया, किसको दिया? कृष्ण ने वरदान दिया तुम्हारा ये भाव हो जाए, वही नल कुमार उनको कृष्ण ने वरदान। कृष्ण के दर्शन से भी हो सकता है अथवा अंतःकरण में स्फूर्ति प्राप्त होता है भगवान की कृपा। ये तीन रूपों में कृष्ण प्रसाद भाव, कृष्ण ने वरदान दिया जाओ तुमको प्रेम या ये हो जाए, बस साधन भजन की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण का दर्शन कर लिया, अमोघ दर्शन, वो प्रेम होगा ही जैसे भी दर्शन किया। और अंतःकरण में स्फूर्ति कराते हैं कृपा गुरु रूप में, शिक्षा गुरु रूप में। अंतर प्रसाद का उदाहरण श्रील सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी। और कैसे कैसे कृपा किया सुखदेव गोस्वामी? तो वो भागवत व्यासदेव जी के कृपा के पहले ब्रह्मवादी थे ऋषि, भागवत में ही लिखा गया ब्रह्मणो परिनिश्चित, परिनिश्चित थे। और उनको ये ऐसे रसिक हो गए जो भागवत को कहा, जहाँ पर नारद ऋषि इत्यादि व्यास सभी लोग पराशर मुनि इत्यादि सब सुन रहे हैं उनकी कथा को और हम लोगों तक पहुंची। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये प्रसादक भक्त और भगवान दोनों की कृपा है। महाप्रभु जी के अवतार में ये तीनों प्रसादक भाव वरदान दर्शन और अंतःकरण में स्फूर्ति ये तीनों भाव दिखाई देता। महाप्रभु को दर्शन करके असंख्य लोगों को भाव दो दुर्दर्शन की दूर दूरदर्शन है दर्शन करके बाघ भालू को हो गया, पेड़ों को पौधों को हो गया, हिंस जंतुओं को भी प्रेम हो गया और प्रेम में गदगद हो करके वो सभी पशु पक्षी लोग भी मनुष्यों की तो बात ही क्या। जगाई और माधाई ने वरदान प्राप्त किया वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा के ऊपर में महाप्रभु जी की कृपा और जी गोस्वामी ने अंतर प्रसाद भाव अंतर किसकी नित्यानंद प्रभु जी की और फिर महाप्रभु की भी कृपा हुई। कृष्ण प्रसाद भाव प्राप्ति नारद मुनि की कृपा से ध्रुव और प्रहलाद को भी भगवत भाव प्राप्त हुआ था। पीछे से रूप सनातन आदि पार्षदों की कृपा से असंख्य लोगों के हृदय में भक्ति के भाव पैदा हुए। एक्सप्लेन ऐसा ही साधन भजन करो, मन को इधर उधर मत ले जाओ। विवाह शादी करने के लिए नहीं बुलाया, यह विवाह का स्थल नहीं है भाई। बार बार मैं कहता हूं दिस इज ए नॉट प्लेस टू सेलेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ, दिस इज नॉट प्लेस। यू शुड ट्राई टू फॉलो और उपदेश एंड ट्राई टू बी लाइक दैट। You have explained something, three Abhilashas and everything. So after that.
The self-manifested function of Bhagavan's Swam Shakti, particularly Sanskriti. And Shiva Santa Vishesh means refers to the Mahashakti, Bhagini. It is in Thai stage, it's called Mahabhava. So when these two vrittis, Samyutta and Bhagini, are combined together in the hearts of the eternal associates, and then the jiva, he is doing sadhana bhajan, and he attains tadatma bhava. His heart becomes one with the function of their hearts. In this day, it's called bhava bhakti. This Sanditan Sandini Shakti appears on Tapuma Sandini. Sandini is existence potency, and in this context it refers to the pure existence of the jiva itself. So Srila Goswami explained, Kriti Sadhya Bhagat Sadhya Bhava Sa Sadhana Vidani Tisida Sabhava Sha Prajan Kriti Sadhya. When someone engages their senses in the hours of bhakti, with the singular aim and objective of causing the manifestation within their hearts of the moods of the eternally liberated associates of Raya Krishna, then their practice is called sadhana. When Bhava manifests There is Bhagavata Avilas, desire to obtain what is today. Anupur Avilas, desire to render faithful service, and Sohar Avilas, refers to intimacy, characterized by intense possessiveness. So, this Shuddha Sattva-Visheshatma, this transcendental praying, is in the heart of the eternal paradise. In Sakyas, it's in the heart of Subha, Sridhar, and others. In Vatsavi, Rasa, it's in the heart of Vanisha, the Nanda Baba, and other associates. And in the Viras, it is in the heart of the Gopis. How will their moods appear in the heart of the Sadhak? You have to do bhajan in their anugatya, chanting, remembering, and following in their footsteps. And when they give mercy, then this mood appears. The natural function of bhava is that it reveals Krishna's roop and Krishna's leader's roop. So Krishna's roop means the roop of Krishna and also the roop of his associates. The awakening of this bhava is of two types. That is, sudden abnegation, japa, and Krishna and Krishna Bhakta Prasada Japa. So sudden abnegation means the bhava which is awakened by abnegation, absorption in sadhana. And Krishna and Krishna Bhakta Prasada Japa means the bhava is japa, that means it's born of the mercy of Krishna and his or his devotees. So, first category, what does Sarvajanabhin message of Bhava means? The Bhava worship arises due to absorption in sadhana. Means that the living entity he associates with a devotee. And by association with that devotee, by hearing the prakar of that devotee, by following the instructions of that devotee, he becomes inspired in the practices of sadhana. Then, without actually that association, hearing the following instructions, no living entity can become inspired in the practice of their sadhana. So then when they practice sadhana, then bhava is awakening in their heart. This is called sadhana vinyasacha bhava. Then, prasadaja bhava. The bhava which is awakened simply by the mercy of Krishna or his bhaktas. This is characterized by the sudden awakening of bhava within the heart by a person who has not performed any sadhana. So that this, one should not take account on this, one should not depend upon this. Why? Because it's extremely rare. So one should go on doing sadhana, and at the time of doing sadhana, one must pray for mercy. So the awakening of bhava by mercy is of three types. The first, the Krishna prasadaja bhava is of three types. Varanam, darshan, and antakaran smriti. It means the first type is simply by uttering words of benediction. Then second type, by having darshan. Krishna darshan put above darshan, infallible. If anyone will see him, or then, if they are faithless, bhava will be awakened. And third one is the harikdan. Means by blessing, the realization or spirit of Krishna is awakened within the heart. So there are many examples. The first example of Varanam is Shukadeva Goswami. The example of Darshan is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Even people who saw Sri Chaitanya Mahaprabhu from very far away, bhava would become awakened in their hearts. In the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all three types of mercy There are many examples of three types of mercy. Jagannath Madurai, their Bhav was awakened by Varada. And she the Jiva Goswami part. The mercy was, the Bhav was awakened in his heart as a spurti, internally. The mercy, the Bhav was awakened by Krishna Bhakta. The examples are Narayana giving his mercy to Dhruva and also to Pralad. Many living entities also awakened Bhav by the mercy of Mahaprabhu's associates, such as Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami. Other examples, we see that the two sons of Nalukubera, the two sons of Kubera, Nalukubera and Nalukubera, in the form of Yamalajun, they did not do any sadhana. But Krishna, he just touched them, and then Bhav and then train was awakened, and they attained the forms of Manushkata and Sminkakata, two associates of Krishna. This was causes mercy. But the root of this causes mercy was actually Narayana, because he had given them a curse which was really a blessing. So another example is Gopkumar gave mercy to the Mathura Brahmin, though he had not done any sadhana. He also attained perfection. So we should not depend upon this because it's very rare. So we have to do sadhana very, very smartly and without any material desire. If someone is coming to the stage of Nishkatina, then all material desires will be very far away. So one should be do sadhana very, very,
you can do some change in
and pray
Baldev
for mercy at the same time. As
he
Shri
not sleeping.
Swami, Shri Rupa Goswami, Shri Shaskaraj, and Shri Vishnu and Shri Thakur, and pray in the
like,
writings. We should follow their prayers and expect
like
the person of
Guru
to do the same.
No. Aaj yahi tak rahega.